SBS हिंदी।
दोस्तों, योग हमारे जीवन का एक ऐसा महत्वपूर्ण पहलू है कि अगर उसको नियमित रूप से अपनाया जाए तो व्यक्ति को सिर्फ तंदुरुस्ती तो नहीं मिलती, लेकिन इसके साथ साथ उसका स्वास्थ्य लंबे समय तक बना रहता है। जीवन में शारीरिक या फिर मानसिक दुविधाएं हों, उसका सामना करने की एक शक्ति इस योग के द्वारा मिलती है। ज़्यादातर हम लोग जब योग की बात करते हैं तो हम योग आसन और प्राणायाम को योग का अमूल्य अंग मानते हैं, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है। योग के बहुत सारे अंग हैं जिसके बारे में हम बहुत कम या फिर अनजान हैं। तो चलिए आज जानते हैं योग को संपूर्ण तरीके से, और इसके बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं हमारे साथ जुड़े हुए योगाचार्य विवेक कुलकर्णी जी। विवेक जी, SBS हिंदी पर आपका स्वागत है।
नमस्ते श्रीदा जी, आपको और दर्शकों को नमस्कार।
विवेक जी, जैसे कि आपसे हमेशा बात होती रहती है हिंदी पर, और हमने जाना है कि योग के कितने लाभ हैं, लेकिन आज आप बताइए कि संपूर्ण योग क्या है और उसको साधने के लिए या उसको सीखने के लिए व्यक्ति को कितना समय लगता है?
हाँ जी, संपूर्ण योग वो चीज़ है जिससे हमें पूरी तरह से शारीरिक और मानसिक संतुलन मिलता है। जैसे अगर हेल्थ, अगर वर्ड आप देखोगे तो उसको संस्कृत में स्वास्थ्य बोलते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ है जो आदमी अपने स्व में, अपने आप में पूरी तरह से स्थित है। तो योग हमें वो चीज पाने में पूरी तरह से मदद करता है, शारीरिक स्तर के ऊपर, मानसिक स्तर के ऊपर, और अपने अंदर के इमोशनल स्पिरिचुअल स्तर के ऊपर भी। तो इसका पूरी तरह से अभ्यास करना और पूरी तरह से इसके साथ अपना जीवन अच्छी तरह से जीना, इसको ये फायदे होते हैं योग से।
विवेक जी, क्या ऐसा हो सकता है कि योग के जो अलग अलग अंग है उसका अलग अलग रूप पे या अलग अलग तरीके से उसका अभ्यास किया जाए?
वैसे योग के 8 अंग है, और जैसे आपने पहले बताया कि हमें ज्यादातर 2 ही अंग पता रहते हैं, आसना और प्राणायाम, लेकिन योग के जो 8 अंग है उनको अलग अलग तरीके से भी आप अभ्यास कर सकते हैं। वो हर एक अंग अपने आप में संपूर्ण है। जैसे अगर किसी को फिजिकल प्रॉब्लम है और अगर वो आसना नहीं कर सकता तो योग उसको भी अपने आप में इंक्लूड कर देता है, क्योंकि वो बाकी के 7 अंगों का अभ्यास कर सकता है। किसी को अगर सांस लेने में तकलीफ है, कुछ लंग्स के प्रॉब्लम है, तो प्राणायाम नहीं कर सकता, तो वो और अंगों का अभ्यास करके अपने आप को पूरी तरह से अपना जीवन अच्छा बना सकता है।
अरे वाह, तो अब हमारे श्रोता मित्रों को बताइए कि वो कौन कौन से 8 अंग हैं जिसको योग में कहा गया है और जिससे ये संपूर्ण योग का अभ्यास किया जा सकता है।
हाँ जी, तो योग के जो 8 अंग है उनको कहते हैं यम, नियम, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो अभी यम और नियम, पहले ये जो 2 अंग है वो क्या है, वो अभी हम लोग जीवन जी रहे हैं, ठीक है। अभी जैसे योग जो पहले करते थे, ऋषि मुनि करते थे हमारे यहाँ पे, उनके पास इतना सब डिस्टर्बेंस नहीं था जो आज हमारे जीवन में है। हमें कितनी सारी चीजों को देखना पड़ता है, कितनी सारी चीजों की वजह से हमारे जीवन में स्ट्रेस आता है, कितनी सारी चीजों की वजह से हमारे डिमांड्स बढ़ते जा रहे हैं, और शारीरिक और मानसिक रूप के ऊपर हमें शांति नहीं मिलती। तो यम और नियम वो जो है, 5 यम और 5 नियम हमें वैयक्तिक और सामाजिक रूप से अपने आप को थोड़ा सा सबसे डिस्पैशन होने में, सबसे विलिप्त होने में मदद करते हैं। तो 5 यम जो है वो है अहिंसा, जैसे मैं किसी की हिंसा नहीं करूंगा। सत्य, मैं हमेशा सत्य के ऊपर चलूंगा, सत्य बोलूंगा, सत्य सोचूंगा। अस्तेय, मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। ब्रह्मचर्य, मैं हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, या फिर अगर आपकी शादी हुई है तो मॉडरेशन में अपना ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। और अपरिग्रह, मैं किसी भी चीज को अपने इसको जो जो चाहिए उससे ज्यादा किसी चीज को अपने पास नहीं रखूंगा। और 5 जो नियम है वो है शौच, मैं अपने आप को आपके शारीरिक और मानसिक स्तर के ऊपर शुद्धता रखूंगा। संतोष, मैं अपने आप में हमेशा संतुष्ट रहूंगा। तपस, मैं अपने आप को थोड़ा सा कष्ट करके अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाऊंगा, मन को तंदुरुस्त बनूंगा, किसी भी छोटी चीज के चीज से अपने आप को परेशानी होगी ऐसा नहीं होने दूंगा। स्वाध्याय, मैं अभ्यास करते रहूंगा, स्व मतलब अपनी खुद का अभ्यास करते रहूंगा, मन का शरीर का ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और ईश्वर प्रणिधान मतलब मैं अपने आप को हमेशा ईश्वर को अर्पित कर दूंगा, आई विल बी ऑलवेज डिवोटेड टू गॉड। तो ये यम और नियम हमें अपने आप को मजबूत करने, मजबूत बनाते हैं अपने आजू बाजू के जो हम लोग जीवन जी रहे उससे।
विवेक जी, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो सारे गुण आपने कहा कि अहिंसा करना है, ज़्यादा किसी चीज़ का संग्रह नहीं करना है, नियत पर काबू रखना है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं महात्मा गांधी ने भी भारतीयों के समक्ष रखी थी, तो उनको भी यहीं से प्रेरणा मिली होगी ऐसा लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
फिर उसके बाद जो नेक्स्ट अंग आता है उसका वो आसना, जो सबको बहुत अच्छी तरह से पता है कि बेंडिंग करने से, स्ट्रेचिंग करने से जो हमारे अंदर जो ऊर्जा है, हमारे अंदर जो एनर्जी है, जो पूरी तरह से ऐसे जगड़ गई है, उसको मूव होना चालू कर देती है, वो हिलना चालू कर देती है थोड़े से स्ट्रेचेस करने से। और अपने आप जितना हो सकता है उतना ही हम हर किसी ने करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि सामने वाला पूरी तरह से बेंड हो रहा है तो मैं भी कोशिश करूँ, इससे फिर आप अपने शरीर को डैमेज कर सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने आप को जितना हो उतना ही करने से भी आपको उसका लाभ मिल सकता है। फिर प्राणायाम जिसको हम लोग बोलते हैं, जो वो पूरी तरह से सांसों का अभ्यास, क्योंकि सांस जो है अपनी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ब्रेथ इज अवर लाइफ, एंड उसका स्टडी करने के लिए उसके अंदर बहुत सारे प्राणायाम सिखाए जाते हैं योग के अंदर। फिर ये चार जो अंग मैंने अभी बताया, यम, नियम, आसना, प्राणायाम, इसका अभ्यास करने के बाद हम उसको बोलते हैं बाहर के एक्सटर्नल अंग बोलते हैं, जो अगर आप इसका अभ्यास शुरू करोगे तो हम बाहर से देख सकते हैं कि अरे हाँ ये बंदा ऐसा ऐसा कर रहा है, वो अहिंसा का पालन कर रहा है, वो तपस कर रहा है, वो स्वच्छता रख रहा है, वो आसना कर रहा है, प्राणायाम कर रहा है, तो इन सबको बोलते हैं एक्सटर्नल लिम्स ऑफ योगा। जो इसके बाद जो शुरू होता है प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि, उनको बोलते हैं अंतर्गत अंग। तो वो क्या है, क्योंकि उसका स्टडी आप जैसे करोगे तो बाहर से किसी को पता नहीं चलेगा आप कितने अंदर पहुंच गए हो, सिर्फ अपने आप को पता चलेगा कि आपने कितनी प्रगति कर ली है। जैसे प्रत्याहार मतलब आहार, मतलब किसी भी चीज का फूड, प्रत्याहार मतलब इंद्रियों का आहार क्या होता है कि इंद्रियों को हमेशा बाहर की चीज चाहिए, आंख देखना चाहती है, कान सुनना चाहते हैं, मुंह बोलना चाहता है, स्किन जो है वो टच करना चाहती है, तो इनको वो सब आहार न देते हुए उनको अंदर अपने आप में विलीन होने के लिए जो अलग आहार हम लोग देते हैं कि अपने आप में मस्त होने के लिए सब इंद्रियों को उल्टा अंदर की तरफ लेते हैं, उसको बोलते हैं प्रत्याहार, इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करना थोड़ी अगर उसको और तरीके से बोला जाए तो। धारणा मतलब कॉन्सेंट्रेशन, जब तक आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं होता तब तक आप किसी भी चीज को पा नहीं सकते, इसके लिए धारणा उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि एक बार आपने इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल कर लिया फिर उसके बाद आप धारणा इजीली कर सकते हो, इजीली हो सकती है आपसे। और ध्यान मतलब मेडिटेशन, एक बार आपकी ध्यान लग गया मतलब एक बार आपने मेडिटेशन कर लिया मतलब आप अपने आप में और अच्छी तरह से विलीन हो जाते हो, अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर सकते हो, अपने आप कोई भी चीज मन के ऊपर और शरीर के ऊपर आपको उस टाइम पे बाधा नहीं देती, परेशान नहीं करती, तंग नहीं करती। तो रोज कुछ सेकंड के लिए भी अगर आप ऐसे बैठोगे, कुछ सेकंड के लिए, मिनट और घंटे तो छोड़ दो, तो भी आपको इतनी ऊर्जा मिलती है अंदर से कि आपके पूरे बच्चे हुए 23-24 घंटे है वो अच्छी तरह से चले जाते हैं, अच्छी तरह से बीत सकते हैं। और उसके बाद जो लास्ट वाला अंग है वो समाधि। समाधि मतलब जो भी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, जो भी यूनिवर्सल एनर्जी है, जिसको आप कुछ भी बोलो, उसको आप भगवान बोल सकते हो, ईश्वर बोल सकते हो, या फिर आत्मा बोल सकते हो, उसके अंदर अपने आप को विलीन हो जाना, उसके साथ एक हो जाना, तो वो हम करते नहीं है, वो अपने आप हो जाता है। तो ऐसी जगह पे हम लोग पहुंच जाते हैं कि अपने आप के साथ हम लोग हमारे आजू बाजू के परिसर के साथ भी पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं, जिससे हमें पता नहीं चलता कि हम शरीर यहाँ पे बैठा है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ, पूरी तरह से विलीन हो जाना अपने आप में और अपने आजू बाजू के एटमोस्फियर में। तो ये ऐसे योग के 8 अंग हैं, जो पहले 4 जैसे मैंने बताए एक्सटर्नल और बाकी के 4 इंटरनल लिम्स ऑफ योगा।
बिल्कुल, और बहुत अच्छा लगा विवेक जी आपसे बात करके, आपने बहुत ही आसान तरीके से संपूर्ण योग के बारे में जानकारी हमारे श्रोताओं को दी। SBS हिंदी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से भी, थैंक यू वेरी मच।
आपके विचार हमें बताएं। SBS हिंदी को फेसबुक पर लाइक करें और @SBS हिंदी को ट्विटर पर फॉलो करें।